फिर इसी तरह से एक और चीज़ देखिए कि दखूले काबा का वाजिब ना होना, यानी काबा में दाखिल होना हम सब पे फ़र्ज़ नहीं है। काबतुल्ला में दाखिल होना बाइस सआदत है, लेकिन हज और उम्रे में ये ना तो फ़र्ज़ है ना ही सुन्नत है मौकदा, वरना तो बहुत सारों का हज और उम्रा हो ही नहीं सकता था। हतीम की नमाज़ का काबतुल्ला के अंदर की नमाज होना, काबतुल्ला में दाखिल होकर नमाज अदा करने की ख्वाहिश की तकमील की एक सूरत हतीम या हिजर के नाम से मशहूर काबा शरीफ के मुलहक जगह में नमाज का अदा करना है, क्योंकि इसमें 6 बालिश्त जगह काबतुल्ला का हिस्सा है। जी, हतीम भी एक बहुत ही खूबसूरत एक तजुर्बा होता है अगर किसी को मिल जाए। अमूमन तो लोगों से भरा तराश होता है, और बहुत ही मेरी जहन में सवाल उठते हैं कि ये क्यों नहीं इसमें आने का रास्ता एक और जाने का दूसरा कर दें। दो रास्ते हैं ना उसमें, एक बंद होता है हमेशा, उधर उनके जो सिपाही हैं वो खड़े होते हैं हमेशा। जो प्रॉब्लम वहाँ जाकर होती है ना, वो वहाँ आने और जाने के लोगों की इंट्रैक्शन होती है। मोस्टली सुबह का वक्त, इशराक के बाद, जो सब जब लोग मोस्टली सारे रात की इबादत के बाद जा चुके होते हैं, ख़वातीन को मौका मिल जाता है। अल्लाह ने आपके नसीब में रखना है ना, और मैं जितना अल्लाह का लाख शुक्र अदा करूं कि यानी इस पूरे सफ़र में मेरे लिए सबसे ज़्यादा जिसको नाकाबिले यकीन एक्सपीरियंस था कि अल्लाह ने मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा हतीम में जगह दे दी। और किस दिन दी? जिस दिन तकमील की दुआ थी। और वल्लाह ही मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँची हूँ, और मेरे इर्द गिर्द इतनी जगह खाली थी, और मैं समझूँ कि कोई मसला क्या है। हत्ता कि वो जो पुलिस वाला था वो किसी को डराने नहीं दे रहा था। मैंने अखीर वहाँ, बल्कि आखिरी जो दुआ थी वो भी वहीं मांगी, और बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द जगह खाली थी। और हालांकि शुरू में जहाँ से घुसते वहाँ बहुत जगह थी। एक पाकिस्तानी औरत थी पीछे, कहती है कोई VIP है ये जिनको आप इतनी जगह दे रहे हैं, और अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। जिसको कहते हैं ना कि उस वक्त मुझे ये होश नहीं थी कि मैं खड़ी कहाँ हूँ और किस रात, 27वीं रात, 29वीं रात है, और दुआ भी हो रही है, और बिल्कुल मेरे साथ कोई मर्द नहीं लगा। इधर सारी पीछे औरतें और मेरे आगे कोई है ही नहीं, जैसे आप इतना हिस्सा खाली कर दें जो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। लेकिन खुद से कभी भाग दौड़ ना करें, खड़े रहें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो हमारे लिए इसको आसान कर दे और हम इस मौके से फ़ायदा उठा दें। आप जा सकते हैं चले जाइए, नहीं जाते आपको नियत पे अदर है। जो नहीं करना ना, वो मर्दों से खत्म गुत्ता नहीं होना, औरतों से भी नहीं गुत्ता गुत्ता आना। और वो मर्द भी इतने ना समझ लगते हैं जो बिल्कुल औरतों में बैठे होते हैं। कई दफ़ा आपको ऐसे नाकाबिले यकीन देखेंगे, औरतों की सफ़े बीच में एक आदमी बैठा है, ब्रदर आप इधर किधर है, ना 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 मैं जो जाती जो जाती, वो औरतों की सफ के अंदर बैठा नमाज पढ़ रहा बेचारा बंदा। ये चीज़ें केयर करने की होती हैं। तो ये सारा जब आप सीख के पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद कम से कम अपना ख्याल जरूर रखेंगे। फिर इसी तरह से देखिए, तवाफ़ और सही के दरमियान वक्फा करना, तवाफ़ के मुत्तसिल बाद सही करना मुस्तहब और अफजल है, लेकिन इनके दरमियान वक्फा करने में ना गुनाह है ना ही फिदिया। वही बात, आप यहाँ से जाएंगे थके हारे होंगे, चलिए तवाफ़ कर लेते हैं, आपने तवाफ़ किया, अब तवाफ़ में भी अच्छा खासा रश था, टाइम लग गया, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप सही साथ ही करें। तो सफ़ा और मरवा के सही करने के दरमियान वक्फ़ा हो सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सही के लिए तहारत का शर्त ना होना, देखिए ये भी कितनी सहूलत है। दौराने सही में तहारत में रहना मुस्तहब है, लेकिन तहारत के बगैर की भी सही की भी दुरुस्त है, क्योंकि तहारत इसके लिए शर्त नहीं है। अच्छा, अब आप समझ गए, तवाफ़ के दौरान वजू टूट जाए तो वजू करना पड़ेगा, सही के दौरान वजू टूट जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ये मुराद है। अब आप कहते हैं तवाफ कर रहे थे वजू टूट गया, गिन लीजिए आप किस चक्कर में हैं, कहाँ खड़ी हैं, वहाँ से करीब तरीन जगह देखिए जहाँ भी कोई आपको वजू की जगह दिखती है। और जो मैंने अभी बताया जगह लिखी होती है, औरतों के नफिल पढ़ने की जगह, मर्दों के नफिल पढ़ने की जगह, वहाँ वजू का इंतज़ाम होता है, वहाँ वजू करके आइए, जहाँ से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू कर दे, पिछले चक्कर आप काउंट करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह दुराने हज तवाफ़ से पहले सही करना, मसनून तरीका यह है कि पहले तवाफ़ फिर सही की जाए, लेकिन तवाफ़ से पहले की हुई सही कसदन हो या सहवन, लाइलमी से हो या असल तरतीब को जानते हुए भी मोतबर होगी, और इस तरह करने से ना गुनाह होगा और ना ही दम लाजिम आएगा। क्या समझे? दुराने हज, आपको पता है ना हज के जो रुकन है, 5 जो चीज़ें लाजमी हैं, उसमें एक तवाफ़ भी और एक सही भी है ना। तवाफ़ को तवाफ़ इफाज़ा कहते हैं, और सही कोई भी एक चीज़ पहले कर सकते हैं। मसनून क्या है? पहले तवाफ़ करें फिर सही करें। लेकिन अगर रश बहुत लगा, तवाफ़ में बहुत रश था, तो आपने सही कर ली पहले, कोई हर्ज नहीं है। रन हत जिसको कहते हैं, रा रमी, नून नहर, और खा हत हल्क, और ता तवाफ है। तो इसमें से किसी पे भी कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। रश इतना होता है वहाँ, आप तो शुक्र करते हैं कि एक काम जो आप कर पा रहे हैं वही कर लें, दूसरा बाद में भी कर सकते हैं। कारिन पर एक सही का होना, ये कारिन आप लोग नहीं हैं, कारिन वही जो के हज किरान की नियत करे, लेकिन वो एक ही सही करेगा, दोनों नहीं होंगी। हज किरान करने वालों पर सिर्फ एक सही होती है, ऐसे लोग तवाफ़े कुदूम के साथ सही करने के बाद तवाफ़े इफाज़ा के साथ सही नहीं करेंगे। बास अहमा के नज़दीक इस पर दो दफ़ा सही करना है, लेकिन अहादीस शरीफा की रोशनी में पहला कौल ही राजे मालूम होता है। तो आपका हमारा हज तो वैसे हज किरान होता ही नहीं है अब कभी तो, लेकिन बहरहाल अगर जो किरान कर रहा है यानी एक ही सफ़र में उम्रा और हज करेगा, तो फिर वो एक ही सही कर ले तो भी किफ़ायत करेगी। उम्रे के बाद वकूफ़े अरफात तक तवाफ़ का वाजिब ना होना। आपने यहाँ से जाकर उम्रा किया, अल्लाह के हुक्म से जब उम्रा कर दिया, अब उसके बाद कोई एक तवाफ भी आप नहीं करते, 2 दिन है, 3 दिन है, जैसे अब आप चले 2-3 को भी पहुंच गए, तो आपने तो 8 को जाना है ना अरफात में, तो 2 से लेकर 8 के बीच में अगर कोई तवाफ भी नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं है, आपकी अपनी खुशी है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि रश को मैनेज करें, आप अपना हिस्सा ये डाल लें कि नए आने वाले करें, हर रोज हज फ्लाइटें आएंगी, जो आए उन्होंने तो करना ही करना है, फिर कम से कम आप रश के वक्तों पे ना करें या नीचे ना करें, ऊपर कर लें, ऐसी जगहों पे करें कि जिसको कहते हैं कि खाली है, तो अदरवाइज़ ये है कि आपको वाजिब नहीं है। उम्रे से फरागत और वकूफ़े अरफात के दरमियानी वक्त में तवाफ़ करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता रब्बे ताला के मेहमान बनने वाले लोग जहाँ भी ठहरें इबादत दुआएं जिक्र करके इस मौके से खूब खूब फ़ायदा उठाएँ। यहाँ तक अगर आप देखें तो उम्रे से मुतल्लिक हर चीज़ हमारी इसमें कवर हो गई है, अब सिर्फ आगे वो चीज़ें रह गई हैं जिसका हज से ताल्लुक़ है यानी अरफात के मैदान से। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? बड़ी मज़े की बात पड़ी थी कि आपको तक इस वक्त हज के मौजू पे सबसे बड़ी और मोटी किताब किसकी लिखी हुई है, उर्दू में तो है ही अरबी में भी है, किसी को पता नाम? कहने की बात जो बताने लगी हूँ वो ये है कि जितनी मर्जी मोटी किताबें हों, जब अमली तौर पर आप जाते हैं तो वहाँ जो आपके साथ पेश होता है वो बहुत है। मुल्ला अली या मुल्ला के नाम पे उनका नाम है, सबसे मोटी हज की बुक उन्होंने लिखी हुई है, तो वो अपना तजर्बा लिखते हैं कि जब मैं खुद हज पे गया तो वहाँ मैं किसी जगह फंस गया, मुझे याद ही नहीं कि आगे करना क्या है। तो मैंने किसी साथ वाले से पूछा कि भाई यहाँ और क्या करते हैं, तो उसने कहा अजीब इंसान हो, तुम्हें आने से पहले मुल्ला अली की किताब पढ़ के आनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद मुल्ला हूँ, ये बताओ कि करना क्या है। कहने का मतलब ये है कि किताबें 100 पढ़ लें, जो जाके भुगतना है, जो वहाँ जाके समझ आती है वो वहीं जाके आती है। तो अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, मुतमईन रखेंगे, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। देखिए आप नेकी करने गए हैं, अल्लाह को राज़ी करने गए हैं, अल्लाह ने आपको बात बात पे गुनाहगार नहीं करना, जहन्नमी नहीं करना। खुशू खुदू ना ख़त्म करें, दिल की बातें, आप गए पता नहीं ज़िंदगी में फिर मौका मिलना है कि नहीं मिलना, अपने सारे गुनाह धुलवा के आएँ, अपनी सारी दुआएं मनवा के आएँ। किसी के घर गए हो तो बंदा अपने लाड़ दिखाता है, चलो भाई अपने शौक़ पूरे कर लो, आप अल्लाह ताला के साथ ऐसे मट्टी से मट्टी होकर आएँ। जैसे कल वो कह रहे थे ना इमाम साहब, इधर भी जब सेशन हो रहा था, कि हज के जाने का मतलब यह कि मैं कुछ नहीं हूँ, अपने आप को कुछ ना समझे, बिल्कुल मट्टी में डाल, मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई राय नहीं, कोई मुझे बातें सुना दे, गाली दे दे, बुरा कह दे, मैं कुछ नहीं हूँ, यानी वो अपनी हस्ती को मिटाने के लिए हम जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर उससे फ़ायदा भी होगा। वरना अदरवाइज आप देखते हैं कि हज करके कितने कितने हाजी के अलहाज और अलहाज के भी अलहाज हैं, लेकिन लोग उससे आगे बढ़ नहीं पाते।